अरपार रेडियो की प्रस्तुति
सुनो गजर क्या गाए।
गजर की तरह विशिष्ट अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी
बिलासपुरियंस की आवाज
गजर ने किया है इशारा।
सभी श्रोता साथी स्वीकार करें अपनी सहेली अलंकृता का नमस्कार। हर बार आपकी सहेली अकेले आती है आप लोगों से मिलने, लेकिन इस बार मेरे साथ कोई है। कौन है बताऊं? मेरे साथ है शिवम। आगे के कुछ हफ्तों तक गजर कार्यक्रम में हम करेंगे जीजीयू दर्शन, और इसी जीजीयू दर्शन में हमसे जुड़े रहेंगे शिवम, जो कि है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट। तो चलिए आज के कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं जीजीयू दर्शन की पहली कड़ी की। और ये जीजीयू है क्या, इसके विषय में हमें विस्तार से बताएंगे शिवम।
कोनी बिलासपुर में अवस्थित है छत्तीसगढ़ का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम महान सतनामी संत गुरु घासीदास जी के नाम पर रखा गया है। इस वर्ष राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी NAC द्वारा विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड से नवाजा गया, जिससे GGU देश के कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों की लिस्ट में आ गया जिन्हें NAC से A++ ग्रेड प्राप्त है, जो निसंदेह बिलासपुर वासियों के लिए गर्व का विषय है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 32 विभाग संचालित हैं, जिनमें लगभग 110 से ज्यादा कोर्सेज की पढ़ाई कराई जाती है।
लेकिन श्रोता साथियों, आप ये मत सोचिएगा कि जीजू में सिर्फ पढ़ाई होती है। पढ़ाई के अलावा भी जीजू में बहुत कुछ होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स की कला के क्षेत्रों में रुचि बनाए रखने के लिए और उनके विकास के लिए जीजू में कई क्लब हैं, जैसे कि उड़ान, चलचित्र, तरंग, अर्चिंस, अभिनर्तन, और ये सारे ही क्लब कला के विविध क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और प्रत्येक क्लब की अपनी एक अलग ही विशेषता है। तो जीजीयू दर्शन के आज के अंक में हम जानेंगे अर्चिंस के बारे में, जो कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का ड्रामा और थिएटर क्लब है, और इसके बारे में हमें बताएंगे शिवम।
अर्चिंस विश्वविद्यालय का एक स्टूडेंट क्लब है जो वर्तमान राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर हास्यपूर्ण व्यंग एवं नुक्कड़ नाटकों द्वारा जनता को जागरूक करते हैं।
शिवम, तुमने तो काफी अच्छे तरीके से हमें बता दिया जीजीयू के बारे में और अर्चिंस के बारे में, पर गजर में हम बातचीत करते हैं अलग अलग लोगों से, उनके बारे में जानते हैं, उनकी रुचियों के बारे में जानते हैं, तो फिर चले आज की इस कड़ी में अर्चिंस वालों से बात करने।
जी जरूर चलते हैं हम अर्चिंस वालों से बात करने। तो आइए इस कड़ी में हम बातचीत करते हैं अर्चिंस के मेंबर राहुल तिवारी से।
राहुल जी, स्वागत है आपका अरपा रेडियो की तरफ से।
धन्यवाद शिवम
जी। राहुल जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अर्चिंस के बारे में आप हमारे श्रोताओं को जरूर कुछ बताइए।
तो अर्चिंस जो है वो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का ड्रामा और थिएटर क्लब है, जो कि सन 2013 में बना था, और जब ये बना तब उसका उद्देश्य यही था कि हम ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचा पाएं कि थिएटर क्या होता है, ओपन स्टेज थिएटर क्या होता है, थिएटर के अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं, साथ ही साथ हम बाहर जाकर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर पाएं
जी।
तो एक अच्छा एक्सपोजर देने के लोगों को और स्टूडेंट्स को कि थिएटर के बारे में, इसलिए इस क्लब को इस्टेब्लिश किया गया था
जी।
तो पिछले 10 साल से हम वही कर रहे हैं।
तो ये काफ़ी लंबा समय हो गया अर्चिंस को ऐसा 10 साल का काम करते हुए, और आप कब से जुड़े हुए हैं सर इससे?
मैं जुड़ा था 2022।
तो ये कह सकते हैं कि हर चीज़ की अपनी एक जर्नी होती है जी। तो आप अपने इस यात्रा को अर्चिंस के साथ किस तरह देखते हैं?
जब मैं कॉलेज में नहीं था, कॉलेज में आने से पहले से ऐसा था कि मैं थिएटर से पहले से जुड़ा हुआ था
जी।
मैं पिछले 6 साल से थिएटर से जुड़ा हुआ था
जी।
तो मुझे ऐसा था कि अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो कुछ ऐसा ग्रुप मुझे भी ढूंढना है जो इसी के आसपास कुछ हो
जी।
तो पहले तो मैं NSS के लिए नुक्कड़ नाटक करना शुरू किया
जी।
तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छा करने लग गया हूँ
जी।
फिर मैंने एक बार अर्चिंस की परफॉर्मेंस देखी ऑडी के सामने
जी,
और वो देखने के बाद मुझे लगा कि अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ
जी,
अभी मैं जीरो पे हूँ
जी।
तो वहाँ से वो एक मोटिवेशन आया कि उनसे सीखा जाए जो ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हैं, मुझसे बेहतर कर
जी।
तो वहाँ से सफर की शुरुआत हुई। मैंने ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हुआ, और फिर बहुत सारे सीनियर्स की गाइडेंस के अंडर काम किया, बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किया, अलग अलग लोगों से मिला
जी,
अच्छा एक्सपोजर मिला, और फिर ये 2 साल तक कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करते रहे, फिर फाइनली लगा कि हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया है एक इंडिविजुअल लेवल पे भी, एक टीम स्पिरिट में भी,
जी
और एक देखा जाए तो ओवरऑल जो एक्सपोजर मिला आर्चिस में जुड़ने के बाद,
जी
तो कह सकता हूँ कि ये जो जर्नी थी मेरी स्टार्टिंग से लेके अब तक बहुत रोमांचक थी, बहुत कुछ देखा सुना।
जी जैसा आपने अभी हमें बताया टीम स्पिरिट के बारे में, हमने जितने आर्चिंस के मेंबर्स से बात की सबने एक बात जरूर कही कि हमारे क्लब के अंदर का जो माहौल होता है और हमारे आपस के बीच की जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छा है और हम एक फैमिली की तरह है। हमने ये भी सुना वंस एन आर्चिंस ऑलवेज एन आर्चिंस।
बिल्कुल।
तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो बॉन्ड है इसे बनाने में या इसे बनाए रखने में सीनियर्स और जूनियर्स का कितना योगदान है।
तो जैसे कि हमारे काफी सीनियर मेंबर है कुणाल भांगी भी है जो कि एनएचडी में
जी।
तो जब मैं नया नया आया था तो मैं उनसे जब पहली बार मिला था तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था कि क्या लगता है आर्चिस में फैमिली बन जाती है। तो उसने मुझे लगा कि बन तो जाती होगी, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं भैया
जी।
तो उन्होंने कहा कि देखो आर्चिस ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आ रहे हैं आपको बोले कि आओ बैठ के फैमिली बनाते हैं, बैठ के बॉन्डिंग बनाते हैं
जी।
वो बैठ के बनाई गई फैमिली फैमिली नहीं रहती। तो उन्होंने वहाँ पे इस टाइम एक चीज कही थी मुझसे और कहा था कि तुम एक टाइम ये फील जरूर करोगे कि जब हम काम के लिए मिलते हैं ना
जी।
और जब काम के लिए मिलते हैं और बहुत ज्यादा मिलते हैं और फिर सबके अलग अलग आइडियाज होते हैं
जी।
वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं
ये
जो नोक झोंक कॉन्फ्लिक्ट झगड़े ये सब चीजें ही हैं जो फैमिली बनाते हैं। अगर मान लो मैं जैसा कह रहा हूँ सब ऐसे ही मानने लग गए तो वो फैमिली नहीं बनेगी, फिर वो डिक्टेटरशिप या फिर एक तो सीनियर जूनियर वाला एक और वो बन के रह जाएगी
जी।
तो आर्चिस में हमारे क्लब में ऐसा होता है फैमिली बनने का रीजन ये है ना कि जब हम बैठते हैं साथ में एक तो हम बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, जब हम साथ बैठते हैं हम सबके आइडियाज सुनते हैं, सबसे डिस्कस करते हैं
जी।
और एक बार आर्चिस में आने के बाद आप सब इक्वल हो
जी।
हो सकता है मुझे कुछ चीज नहीं आती, किसी जूनियर को आती है तो वो जूनियर का हम लोग सुनेंगे, मुझे कुछ आता है मैं अपना बताऊंगा। तो सब अपने अपने आइडियाज को रखने के लिए कंफर्टेबल है, सब अपने अपने चीजें बता सकते हैं बोल सकते हैं, वो एक इंडिपेंडेंस फील होना सबको वही एक बॉन्ड को एस्टेब्लिश करता है
जी। राहुल जी हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि आर्चिंस के परफॉर्मेंस और उनके शोज के बारे में कि वो
अच्छा।
दर्शकों के सामने किस तरह के कंटेंट लाना चाहता है, क्योंकि आज के समय में हम देखें तो कहीं ना कहीं ये बात खुलकर सामने आती है कि शोज में या यूं कहें कि किसी भी कंटेंट के क्षेत्र में उनके जो स्तर है उसमें काफी गिरावट आई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें।
तो जैसे कि आर्चिंस हुए हम आर्चिंस को सोशियो पॉलिटिकल ग्रुप मानते हैं
जी,
मतलब कि हम राजनीतिक सामाजिक जितने भी मुद्दे जो अभी चल रहे हैं करेंटली जो दिख सबको रहे हैं लेकिन उन पर कोई बात नहीं कर रहा, उसके बारे में कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा
जी,
तो हम उन मुद्दों को उठाते हैं और उन पे हम नुक्कड़ बनाते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे नुक्कड़ हैं, समाज क्या कहेगा, स्त्री और बोधिन, माध्यम या मिथ्या, अवसाद का खेल, तो जितने भी हमारे आर्चिंस के इतिहास में अभी तक जितने भी नुक्कड़ हमने बनाए हैं वो सारे नुक्कड़ आप उठा के देखिए, सारे नुक्कड़ किसी न किसी समाज में हो रही किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और हम अपने दर्शकों को ये बताते हैं कि हम अपने नुक्कड़ के माध्यम से बताते हैं कि देखो समस्याएं क्या क्या हैं, समाधान कैसे ढूंढे जा सकते हैं। हम सीधे समाधान नहीं बताते कि आप इसका समाधान यही आप यही करो
जी,
हम वो नहीं बताते। हमारा मकसद ये रहता है कि अगर हम कोई सामाजिक समस्या को पकड़ रहे हैं उसके ऊपर नुक्कड़ बना रहे हैं तो हम पहले समस्या को समझाएं कि समस्या असल में है क्या, उसको समझे कैसे है, उसके बारे में किया क्या क्या जा सकता है, बाकी करना कैसे है वो आपको खुद जानना है
जी।
तो हमारा मकसद हमारे नाटकों से यही रहता है कि हम समाज में हो रही अलग अलग चीजों के बारे में लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है
जी,
ताकि लोग अवेयर हो पाए उस चीज को लेकर
जी। जैसा कि आपने कहा कि आर्चिंस सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पे नुक्कड़ नाटक बनाते हैं, तो क्या कभी इन सब वजहों से कभी कोई विवाद खड़ा हुआ हो या आपके काम में कभी कोई बाहरी परेशानी आई हो इन सब वजहों से।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार हुआ ऐसा। जैसे एक बार की बात है, हम कोनी के थोड़ा आगे एक जगह परफॉर्म कर रहे थे बिलासा के पास
जी।
तो परफॉर्म करते टाइम हम लोगों को अवेयर कर रहे थे अलग अलग मुद्दों को लेके
जी।
तो अब होता क्या, जब हम कभी नुक्कड़ नाटक कर रहे होते हैं तो वहाँ के आसपास के कुछ लोग जो हमारे बात से एग्री नहीं करते हैं
जी,
तो वो वहाँ भड़क जाते हैं
जी।
तो वहाँ पे उस चीज को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे एक बार हम अचानक मार्ग में पर्यावरण संरक्षण के लिए हम नुक्कड़ कर रहे थे, पर्यावरण को कैसे बचाएं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जो जंगल में महुआ बीनने के लोग आग लगा देते हैं तो उनको ना रोक के महुआ जाली का इस्तेमाल करें, तो इन सभी समस्याओं को लेके हम एक नुक्कड़ तैयार करके लेके गए थे अचानक मार्ग के अंदर जितने भी गांव है वहां पे
जी
परफॉर्म करने के लिए। तो वहां पे एक बार क्या हुआ कि कुछ लोगों की भीड़ में से कुछ लोग आक्रामक हो गए कि तुमने खुद कितने पेड़ लगाए हैं बताओ, हमें क्यों इतना ज्ञान दे रहे हो, हम नहीं जलाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसा वैसा
जी।
तो वो अक्सर ऐसी बाधाएं आती रहती हैं कि कुछ लोग जो समझ जाते हैं वो समझ जाते हैं शांत हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं सब जगह ही होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो तो लोग रहते ही हैं जो हमारी बातों सहमत ना हो, अगर सभी सहमत हो जाएं तो फिर बात ही क्या है, कुछ ना कुछ तो लोग होंगे जो सहमत नहीं है,
जी,
लेकिन हम अपना काम नहीं छोड़ते, हम अपना करते रहते हैं।
तो एज अ थिएटर ग्रुप या यू कहें कि एज अ आर्टिस्ट, जब ऐसा विरोध का स्वर सुनाई देते हैं तो आपको एज अ ग्रुप भी या एज अ आर्टिस्ट भी कैसे प्रभावित करती है?
देखिए ये दोनों अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। अगर एज अ ग्रुप देखा जाए
जी,
तो अगर एज अ ग्रुप की बात की जाए तो वहाँ पे एक सेटबैक रहता है हमारे लिए कि अगर यहाँ से ऐसा विरोध मिल रहा है
जी,
तो अगली बार जब हम वहाँ पे दोबारा परफॉर्मेंस देने जाएंगे तो वहाँ पे कैसा इफेक्ट रहेगा वो सोचना पड़ता है
जी।
लेकिन अगर एज अ आर्टिस्ट बात करें तो सबके लिए अलग अलग होता है। अगर मेरा पर्सनल इंडिविजुअल बताऊं मैं
जी,
तो एज अ आर्टिस्ट अगर कहीं में मुझे ऐसा विरोध दिखता है तो वो मुझे और एड्रेनलिन रश देता है, मुझे और वो करता है कि हाँ अगर यहाँ पे ये इंसान को ये चीज पसंद नहीं आई तो क्यों नहीं आई
जी।
तो मुझे वो चीजें देखने में ज्यादा मजा आता है। अगर कहीं पर कुछ विरोध होता है तो मुझे देखना है कि क्यों हो रहा है, उसका असली कारण क्या है, ताकि जब अगली बार मैं वहां पे आऊं कोई दूसरा नाटक लेके मुझे पता हो कि हाँ कौन सा व्यक्ति की को कौन सी बात बुरी लगी थी, ताकि उसके अराउंड में कुछ काम करके आप। अगर विरोध भी दो तरह का होता है, एक विरोध होता है कि आर्टिस्टिक लेवल पे कुछ गलत हुआ हो मुझसे, अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो मैं उसको सुधारूंगा, लेकिन एक विरोध है कि अगर हम बातें सही कर रहे हैं और मेरी सही बात उनको गलत लग रही है तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरी बात सही है, तो मैं अपनी सही बात तो करूंगा।
जी जी जरूर, धन्यवाद राहुल जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके।
थिएटर एक आईने की तरह होता है जिसमें हमें अपने समाज का प्रतिबिंब दिखाई देता है।
बिल्कुल सही कहा शिवम। तो चलो थिएटर और ड्रामा के बारे में कुछ और बातें जानने चलते हैं अंशु से बातचीत करने।
आज हमारे साथ मौजूद हैं अर्चिन से अंशु शिदार। अंशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे यूनिवर्सिटी में कई सारे कल्चरल ग्रुप्स हैं, जैसा हमें पता है, हमें बताया गया, तो आपने कैसे निर्णय लिया या अंशु कोई कैसे निर्णय ले कि हमें अर्चिन में जाना चाहिए?
एक्चुअली मेरे को पता सबके बारे में चला, जैसे अभिनर्तन और तरंग अर्चिन, मैंने सबका परफॉर्मेंस वगैरह देखा जो उन लोग करते हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा इफेक्टिव अर्चिन लगा
जी।
क्योंकि इनका जो काम है ना वो एक्चुअली सोशल बेस्ड है, लोगों तक मैसेज पहुंचाना है
जी।
और मुझे यही चीज पसंद आया।
तो आप कितने समय से जुड़ी हुई हैं अर्चिन के साथ?
अभी लगभग एक साल होने को
जी। आपने आपने एक साल अर्चिन के साथ वक्त बिताया, आप हमें बताएंगी कि कैसे आपने शोज किए या कैसे आपने नाटक किए?
हाँ, मैंने अभी तक सिर्फ नुक्कड़ नाटक ही प्ले किया है। मेरा पहला नुक्कड़ नाटक था, एक प्रोजेक्ट खुशी था हम लोग का, जो कॉलेज के अंदर नहीं था, वो कॉलेज के बाहर था, और हमको वो एक प्रोजेक्ट मिला था, अपॉर्चुनिटी थी बहुत बड़ी, वो था प्रोजेक्ट खुशी
जी।
और उसको हम लोगों ने बिलासपुर के सेंट्रल जेल में किया था।
अच्छा।
नुक्कड़ नाटक वो था डिप्रेशन के ऊपर।
तो मेनली अर्चिन इन्हीं सब सब्जेक्ट पे या हम कहें कि इन्हीं सब विषयों पर ज्यादा फोकस करता है जब उन्हें नुक्कड़ नाटक करनी हो, जो सामाजिक विषय है।
हाँ।
अंशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने इतना समय बिताया है अर्चिन के साथ, आप मुझे बता पाएंगे कि वो ऐसी क्या चीज है जो अर्चिन को बाकी कल्चरल क्लब से अलग बनाती है?
डिसिप्लिन
जी,
और सोचने समझने की जो मतलब क्षमता है
जी,
वो बढ़ती है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और हम लोग जो सोशल जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग अलग नजरिए से देखते हैं, और उसको इस तरीके से मतलब लोगों के सामने दिखाते हैं कि लोगों तक मैसेज भी पहुंच जाए और लोगों को मजा भी आए देखने में।
तो अंशु जी, हमें अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए ताकि हमारे श्रोतागण भी जान सके।
अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स ये हैं कि हम लोग के न्यू बैच आने वाले हैं जूनियर
जी,
तो हम लोग को उन लोग को बताना है अर्चिन के बारे में जब वो लोग आएंगे, तो उसके लिए हम लोग वर्कशॉप कराने वाले हैं और एक नुक्कड़ नाटक कराने वाले हैं कॉलेज जब स्टार्ट होगा गर्मी छुट्टियों के बाद, तो ये अभी हमारी अपकमिंग प्लानिंग है
जी। आपने जैसा कहा कि हमारे जूनियर्स आने वाले हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई कैसे अर्चिन को ज्वाइन कर सकता है?
अभी तो डेट बताया नहीं गया है, लेकिन आने के बाद हम लोग पोस्टर रिलीज करेंगे जिसमें डेट रहेगा वर्कशॉप का और ऑडिशन का, जिसमें आप आके ऑडिशन दे सकते हैं, और उस ऑडिशन को क्वालिफाई करने के बाद आप अर्चिन में आ सकते हैं
जी। तो अर्चिन ऑडिशन बेस्ड सिलेक्शन लेता है, क्या आप बता पाएंगे कि वो जो प्रोसेस होता है, आपने भी ऑडिशन दिया होगा, हम जानना चाहेंगे कि आपका जो ऑडिशन था उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया, ऑडिशन से भी ज्यादा मजा वर्कशॉप में आता है, तो वर्कशॉप मैं कहूंगी कि जितने ज्यादा हो सके वर्कशॉप अटेंड करना चाहिए लोगों को, और ऑडिशन भी बहुत मजेदार था जिसमें आपका एक्टिंग का होता है और जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करना था उसका भी होता है, प्रॉप आर्टिस्ट का होता है, मतलब जिस फील्ड में भी आप जाना चाहो, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, मतलब अर्चिन एक्चुअली जो एक्टिंग करते हैं उन्हीं को नहीं, जो गाने बजा सकते हैं, गाने गा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, प्रॉप आर्टिस्ट, ये सभी चीजों को देखते हुए वो सिलेक्ट करते हैं।
जी, मतलब हम कह सकते हैं कि अर्चिन सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि आपके समग्र विकास के लिए, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे आपका आर्ट वर्क हो या म्यूजिक हो, आप लोग हर क्षेत्र में छात्रों को जो है वो उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। अंशु जी, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब तक आपकी अर्चिन्स के साथ सबसे अच्छी याद कौन सी रही?
मेरी अर्चिन्स के साथ सबसे अच्छी याद वो रही जो हम लोग ने प्रोजेक्ट खुशी 2.0 किया था रायपुर में। पहला हम लोग ने बिलासपुर में किया था और इसका सेकंड पार्ट था हम लोग जो रायपुर में हम लोगों ने किया था।
जी, आपने जैसे बताया कि आपने बिलासपुर में प्रोग्राम किए, रायपुर में, तो क्या अर्चिन्स जगह जगह जाके प्रोग्राम करते हैं?
हाँ, जगह जगह जाके प्रोग्राम करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। हमको जो प्रोजेक्ट मिलता है सामने से, अपॉर्चुनिटी आती है तो हम ट्राई करते हैं कि एक भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें और वहाँ जाएं और कुछ नया सीखें।
अंशु जी, कई बार ऐसा होता है कि इंसान को सेल्फ डाउट तो आते ही हैं।
हाँ,
मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कई बार या कुछ परफॉर्मेंस के बाद क्या आपको कभी ऐसा लगा कि इस बार मुझसे थोड़ी कमी रह गई या इस बार हमारे ग्रुप से थोड़ी कमी रह गई?
हाँ, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि हम लोग ने तैयारी किया रहता है, लेकिन हम लोग जब जाके परफॉर्म करके आते हैं तो कुछ चीज हमसे छूट जाती है, पर ऑडियंस को पता नहीं चलती। वो हमारी तारीफ करते हैं, वो तो हमें अच्छा लगता है तारीफ सुन के, लेकिन वो हमें पता रहता है कि कुछ कमी रह गया, कुछ एक्ट मिस हो गया, कुछ डायलॉग मिस हो गया, तो वहाँ पर थोड़ा रिग्रेट लगता है और सेल्फ डाउट आता है कि यार ये मिस हो गया, ये नहीं कर पाई, ऐसा हो गया करके, तो यही होता है।
जी, ये सवाल बहुत लोगों के मन में ऐसे उठता होगा और मैं अपने श्रोताओं की तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक आर्टिस्ट होने के नाते, एक कलाकार होने के नाते, आप कैसे रिएक्ट करती हैं जो ऑडियंस का रिएक्शन है? कई बार ऑडियंस का रिएक्शन हमारे मुताबिक नहीं होता, कई बार हम खुद से अच्छा करते हैं पर ऑडियंस का रिएक्शन हमें उतना अच्छा नहीं मिल पाता, तो आप एज अ एक्टर कैसे रिएक्ट करते हो ऑडियंस के रिएक्शन पे?
देखो, ऑडियंस का रिएक्शन देना उनका काम है, वो रिएक्शन देना मतलब जरूरी है, क्योंकि उनके रिएक्शन से ही हम लोग अपने काम पे फोकस करेंगे और हम लोग का जो जो जिस तरीके से हम काम करें, अच्छा हो या बुरा हो या कुछ कमी हो, हम उस पर फोकस करेंगे। उनका रिएक्शन देना जरूरी है, हमें कोई रिएक्शन नहीं देगा तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी करते चले जाएंगे। हमें कोई बताने वाला होना भी चाहिए कि यहाँ मिस्टेक था, ये मज़ा नहीं आया, इसमें और कुछ अच्छा हो सकता था, यहाँ कमी थी, तो वो जब रिएक्शन मिलता है ऑडियंस की तरफ से तो हम उसको और बेहतर तरीके से करते हैं।
जी अंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।
कितनी सही बात कही ना अंशु ने, एक कलाकार सिर्फ तालियों और तारीफों का मोहताज होता है, उसे बड़ा पुरस्कार, इनाम, रुपए पैसे नहीं, बस अपनी कला की प्रशंसा चाहिए।
बड़ी अच्छी अच्छी बातें पता चल रही है इन सभी कलाकारों से बातचीत करके।
हाँ दीदी, तो अर्चिन्स के बारे में और भी बातें जानने के लिए चलते हैं अर्चिन्स के एक और मेंबर अभय के पास।
मुझसे बात करने के लिए जुड़े हैं अर्चिन्स के एक मेंबर अभय मनहर। अभय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अर्चिन्स से कैसे जुड़े?
सर, अर्चिन्स का तो ऐसा था कि देखिए, पहले तो मैं गुरुहासस विश्वविद्यालय में एनरोल हो गया, मैं वहाँ एडमिशन ले लिया। उसके बाद मुझे ऊपर ऊपर से इतना तो पता था कि यूनिवर्सिटी में कई सारे क्लब्स हैं, लेकिन उतना मुझे नहीं पता था कि एक अर्चिन्स नाम का एक क्लब है। मुझे तब इसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला जब इन्होंने पहला वर्कशॉप करवाया, हमारे डिपार्टमेंट में आया और इन्होंने बताया कि हमारा एक क्लब है अर्चिन्स, जो ड्रामा एंड थिएटर करता है और इसी सब एक्टिविटीज़ में एनरोल रहता है। ये नुक्कड़ करता है और समाज में जो कुछ रीतियाँ जो चल रही हैं और उसके बारे में लोगों को अवेयर कराता है, कई सारी चीज़ें ये करता है। तो वहाँ मुझे इस बारे में पता चला, इन्होंने वर्कशॉप कराया था तो उसमें जब मैं गया तो उसके पहले मुझे एक्टिंग का ABCD नहीं पता था, ठीक है सर
जी,
लेकिन जब मैं वहाँ गया मैंने उन्हें देखा कि कितना अच्छा कर रहे हैं। एक वो होता है ना कि आप जिस चीज़ को पहली नज़र देखते हो तो एकदम मन सा लग जाता है कि यार कुछ तो चीज़ है, ये अब करनी है
जी।
उसके बाद अर्चिन्स का ऑडिशन इन्होंने करवाया
जी,
तो उस टाइम पे मेरे में ऐसा था कि जाना ही है, कोई दोराही ही नहीं है
जी,
है ना, जाना ही है, ऑडिशन देना ही है। तो उसके बाद मैंने अपने से एक सिनेरियो इमेजिन किया
जी,
उससे स्क्रिप्ट लिखी, अपने से लिखी मैंने, फिर उसको एक बार, दो बार, तीन बार इनेक्ट कई बार किया मैंने
जी।
इतना अच्छा मैं कर सकता था अपने से, मुझे ABCD नहीं मालूम, कुछ भी नहीं। एक वो होता ना कि हाँ मुझे लग रहा है ऐसा जाएगा फिर ऐसा जाएगा, आपने मैंने पूरा प्रिपेयर किया
जी,
एंड देन मैंने ऑडिशन दिया। और उसके बाद सुनिए तो ऑडिशन का भी एक किस्सा अजीब सा है।
जी जरूर सुनाइए हमारे श्रोताओं के लिए।
तो ऑडिशन में ऐसा था
जी
कि मैं जा करके बैठा हुआ हूँ, ठीक है
जी,
भीड़ बहुत सही सही आई थी और मैं चुपचाप साइड में ऐसा बैठा हूँ। अब जिसको कुछ मालूम नहीं उसका ऐसा रहता है कि एक दो ऑडिशन हो जाने दो, मैं देख लेता हूँ कैसे चल रहा है एंड देन मैं दूंगा। तो कुछ वैसा ही था। मैंने एक लड़की का ऑडिशन दिया था जो अभी भी अभी हमारे क्लब में सेलेक्ट हो चुकी है, उनका नाम आयुषी था। मैंने उनका परफॉर्मेंस देखा और मुझे ऐसा लगा था यार ये कितना पहले से कर रही है, कितना अच्छा कर रही है, मेरा कैसे होगा
जी।
बट लेकिन ऐसा था कि और जो कई लोग थे
जी
वो आगे नहीं आ रहा था और ऑडिशन देने के लिए, तो भैया ऐसा बोलते थे कि अब तू बैठे ये सामने आ जा, तू दे दे ऑडिशन दे दे
जी।
मतलब मैं देने ही आया था लेकिन ऐसा था कि एक दो बार एक दो लोग के और बात दूंगा, लेकिन नहीं मैं बोला तो मैं बोला।
आप रुके थे कि पहले दो चार लोगों को देख लूं।
हाँ जो शाइनेस जो होती है ना तो ऐसा था
जी।
जब उन्होंने बोला कि अब तू बैठा तू ही आगे देखे जा, फिर मैंने ऑडिशन दिया। ऐसा था कि मैंने एक सांस पूरा दे दिया, मैं अटका नहीं, प्रॉपर एकदम प्रैक्टिस करके आया था
जी,
दे दिया मैंने। उसके बाद ऐसा था कि अब हो गया मेरा काम, मैं ऐसे जा ही रहा था, भैया बोलते हैं ऑडिशन आपने दे दिया, अब एक और एक हम सिनेरियो देंगे उसमें आपको करना होगा। मैंने बोला यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस वाली बात हो गई, मेरे को तो ऐसा लगा तो मैं ही प्रिपेयर करके आऊंगा घर सर्वो दूंगा। बोलते नहीं आपको एक और देना पड़ेगा
जी।
तो उस बार उन्होंने सिनेरियो दिया। अब सिनेरियो वो लोग सर ऐसा अजीब अजीब सा दे रहे हैं।
अच्छा
खुद सुन, हाँ मुझे क्या मिला था मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है
जी सर।
मुझे मिला था आपके परिवार में किसी एक सदस्य की मृत्यु हो गई है।
अच्छा।
और आपको और आपके दोस्त ने आपको लाफिंग गैस पिला दी है। वो गैस होती है ना सर N2O, जिसे आप इनहेल करते तो एकदम से हंसने से लग जाते हैं
जी।
तो मैंने सोचा ये तो कुछ अलग से ही नहीं ना हो गया
जी,
अगर आपका परिवार कैसे मारा है तो कुछ चांस ही नहीं कि आप हंस सको। अब उसने आपको हंस के बोलना है
जी,
मेरे को बोलते तुम्हारे पास 10 मिनट है प्रिपेयर करके आओ, और मैं ऐसे चुपचाप जाके साइड में बैठा हूँ कि मैं कैसे करूँ करूँ कैसे। अब वो तो मैंने चलो जैसे तैसे दे दिया, मैं बोला हाँ ठीक है जितना हो सकता था हमने दे दिया
जी।
तो इतने पे भी सर वो लोग नहीं रुके सर, उसके बाद क्या कहते हैं आपको एक इंटरव्यू भी देना है आपको। तो उसका ऐसा था कि पार्ट है पूरा सीरीज का कहना चाहिए कि हाँ एक सर दूसरा सर, तो हमने जाके दिया इंटरव्यू। सर मैं बोलूंगा मेरा इतना खराब गया था सर, ऐसा था कि है ना एक वो होता ना कि मैं सर फन वाला था कि मैम जब बोलती है कि मैम जब मुझे बोलती है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो मेरा ऐसा था कि पहले कभी हमने दिया नहीं इंटरव्यू, कभी दिया नहीं, क्या क्या मैं बोलूं। मैंने उन्हें ये बोला तो भड़क गई मैम, तुम आए हो तुमको मालूम नहीं है। तो कुछ वैसा ऊपर नीचे सा चला था। तो मेरा ऐसा था कि मेरा तो ये होने से रहा, भले मैं एक्टिंग में ठीक ठीक करके निकल गया जितना मेरे से हो सकता था, लेकिन इसमें तो मेरे साथ ना हो रहा।
परेड में आपका सिलेक्शन हुआ और आप अभी अर्चिन से जुड़े हुए हैं जी। अब है अर्चिन से जुड़े हुए आपको कितना समय हुआ?
सर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में जुड़ा था, लगभग अभी मुझे 7-8 महीने हो चुके हैं।
तो आप इतने समय से अर्चिन से जुड़े रहे, हमारे श्रोताओं को बताइए अभय कि आपने कैसे कैसे परफॉर्मेंस किए अर्चिन्स के साथ जुड़ के।
सर अर्चिन्स में हमने लगभग 5 परफॉर्मेंस हमने दी हैं
और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज आती रही।
हाँ
जी, अर्चिन्स के बारे में मैं अभी पढ़ रहा था और अर्चिन्स के बारे में मैंने इतना जाना कि ये सामाजिक और ऐसे राजनीतिक विषयों पर हास्यपूर्ण व्यंग करती है अपने नुक्कड़ों के द्वारा।
हाँ
आप इतने समय से जुड़े हुए हैं, आपने ये देखा है कि अर्चिन्स कैसे मिलजुल के काम करती हैं।
हाँ,
और आपने बताया कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारी क्लब्स भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा अब है कि आपने क्यों तय किया ये कि मैं अर्चिन्स में ही जाऊँगा, और ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज़ है जो अर्चिन्स को बाकी क्लब से एक बेहतर क्लब बनाती
है? सर यहाँ मैं एक लाइन कोट करना चाहूँगा जो मुझे कही जाती है और जो मैं प्रोफेसर मानता हूँ कि बात सही है
जी।
जो कहते हैं कि वंस एन अर्चिन ऑलवेज एन अर्चिन
जी,
आप अर्चिन बन गए तो आप हमेशा ही रहेंगे
जी।
मतलब अगर मैं ऐसा लेके जाऊं कि अगर आप एक बार इस परिवार में आ गए तो आप इस परिवार का ही हिस्सा हैं, जो मुझे लगभग और किसी क्लब में नहीं दिखाई देती
जी।
इसके पास मुझे सबसे प्यारी लगती है कि ये इस असली परिवार जैसा मुझे प्रतीत होता है। जब मैंने इसमें ज्वाइन किया है, मैं सब अपने टीम मेट्स के साथ रहता हूँ, क्वार्टर्स के साथ में रहता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है ना। जितना यहाँ बहुत सेलेक्टिव मेंबर्स है, ठीक है बहुत कम है, तो ऐसा आप सबसे घुल मिल के बात कर सकते, घुल मिल के बात करते रहते हैं, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम काम के बारे में ही बात करें, अगला नुक्कड़ जो करने वाला अगला परफॉर्मेंस करने वाला, सिर्फ उसके बारे में बात नहीं करते, हम अपनी लाइफ के बारे में बात करते, इससे हमारी बॉन्डिंग और अच्छी होती, तो बहुत अच्छा लगता है सबके साथ में। ये मुझे लगता है कि ये अलग बात हो सकती है बाकी सब क्लब से अर्चिन की, और ये जो मुद्दे उठाती है, जो सामाजिक कार्य जो करती है, तो हाँ ये बहुत बताओ कि क्लब करते होगा, तो ये मेरे क्लब की एक अलग बात लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है
जी। आपकी बातों से हमें ये लगा कि आपके जितने मेंबर्स हैं अर्चिन्स के, उनके बीच में ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अर्चिन्स में एज अ पर्सन, जब से आप अर्चिन्स से जुड़े, तो आपकी क्या पर्सनल इनसाइट्स रही, आपकी जो व्यक्तिगत अनुभव रहा अर्चिन्स के साथ जुड़ के बाकी मेंबर्स के साथ, वो कैसा रहा?
बहुत अच्छा था मैं कहना चाहूंगा जी। एक वो होता ना कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आपने इतने सारे मोमेंट शेयर किए हैं, इतने सारे संग में मस्ती की है, संग में आपने काम किया है
जी।
तो एक अलग अलग बॉन्डिंग हो जाती है, एकदम ऐसे एकदम दोस्ती दोस्ती वाला रहता है। हमारी कोई सीनियर्स नहीं है उसमें, एकदम भैया वाला चलता हमारा
जी।
वो होता है जिसको आप देख के एडमायर कर सकते हो, कुछ भी बात उनको बता सकते हो, वो इतने एक्सपीरियंस तो है उनमें कि इतने भाई तो हैं वो बड़े से कि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं, कुछ मन में ऐसी बात कर रहे हो तो उनको आप शेयर कर सकते हैं, बिना कुछ संकोच के शेयर कर सकते हैं, जो कि वो जनरली सुनते फिर बताती है देख ऐसी बातें हैं जो आप इससे आप काम कर सकते हैं, एकदम वैसा रहता है। बहुत अच्छा,
बहुत बहुत धन्यवाद अभय, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा।
दीदी अभय ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे एक ग्रुप की तरह काम करके कैसे आपसी बॉन्ड मजबूत होते हैं, और क्योंकि मैं भी इस अर्चिन्स फैमिली का हिस्सा हूँ इसलिए मैं ये जानता हूँ कि जब भी हम एक ग्रुप के तौर पर एक साथ काम करते हैं तो हमें काफ़ी मज़ा आता है और हम सब मिलकर बहुत इंजॉय करते हैं।
हाँ शुभम, बिल्कुल सही कहा तुमने, और कोई भी काम जब सबके साथ मिलके किया जाए ना तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। ये तो हमें पता चल गया कि अर्चिन्स एक परिवार है और परिवार की तरह सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, पर इस परिवार में इतने सारे लोग मिलकर काम कैसे करते हैं?
दीदी यही जानने के लिए अब हम बात करेंगे अर्चिन्स के एक और मेंबर अंकित से।
अंकित जी, अर्पा रेडियो में आपका स्वागत है।
धन्यवाद आपका।
तो अंकित, हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे कि अर्चिन्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एकमात्र थिएटर ग्रुप है, अंकित जी आपका मेरे और मेरे श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है।
जी शुक्रिया आपका।
अंकित जी, जैसा कि हम जानते हैं कि अर्चिन्स जो थिएटर ग्रुप है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर का एकमात्र थिएटर ग्रुप है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस ग्रुप से आप कैसे जुड़े और इससे जुड़ने के बाद आपके क्या पर्सनल अनुभव रहे?
जी, इस ग्रुप से जुड़ना तो मुझे फर्स्ट ईयर में ही था कॉलेज के
जी,
मगर मौका नहीं मिल पाया, तब ऑडिशंस एक्चुअल में हुए नहीं थे, तो मुझे मौका मिला मेरे सेकंड सेमेस्टर में कॉलेज के, जब हमें पता चला कि अर्चिन्स का ऑडिशन हो रहा है, और फिर मैंने ऑडिशन देने गया। मैं ऑडिशन में, फिर मुझे ऑडिशन देके मुझे लगा नहीं फिलहाल कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा
जी,
है ना, जिस तरह से गया था, लेकिन शायद उन्होंने कुछ देखा मुझ में
जी,
शायद वो पोटेंशियल उन्हें नजर आया
जी,
फिर उन्होंने मुझे ले लिया। फिर जब यहाँ पर अब आके समझ आता है ना कि जिस तरह के लोग यहाँ आए हैं
जी,
सब में वो एक खूबियां हैं, सीखना शायद एक मेन खूबी थी सब में
जी। तो आपने कहा कि सब सीखने में काफी दिलचस्पी रखते हैं आपके क्लब में, तो हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि अगर कोई आपके क्लब से जुड़े तो पहले तो क्या जरूरी है एज अ अर्चिन्स मेंबर बनने के लिए, और अर्चिन्स मेंबर बनने के बाद हम किन किन चीजों को सीख पाएंगे?
जी, अर्चिन्स में आने के लिए सबसे खास बात तो ये है कि आपको कुछ भी पहले से सीखना नहीं पड़ता।
अच्छा, और आपको जीजीयू का स्टूडेंट होना पड़ता है?
हाँ, जीजीयू का स्टूडेंट आपको होना पड़ेगा
जी। तो क्या अर्चिन्स सिर्फ जीजीयू के स्टूडेंट्स और उनके लिए ही है, या कोई बाहरी कलाकार भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं?
इस बाहरी कलाकार तो नहीं कर पाएंगे
जी,
आखिरकार तो यूनिवर्सिटी का ही क्लब है
जी,
तो जीजू का स्टूडेंट होना तो पहले ही क्वालिफिकेशन होगी
जी।
मगर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कुछ पहले से सीखना नहीं पड़ता
जी।
अगर आप गाना गाना चाहते हैं तो आपके सुर लगने चाहिए
जी,
है ना, अगर आप डांस करना चाहते हैं तो आप मटकने चाहिए
जी,
है ना, मगर आप जब एक्टिंग करना चाहते हैं तो ये पहले से कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको ये आना चाहिए वो आना चाहिए, है ना, ये एक ऐसा क्राफ्ट है जो इंसान सीख जाता है करते करते
जी,
है ना, एक ट्रेनिंग मिलती है। तो अर्चिन्स में आने के लिए शायद सबसे ज्यादा मेन चीज था डेडिकेशन
जी,
कि आप वक्त दे सकते हैं अपना, आप शायद सीखने के लिए काफी ओपन है ना, आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लोगों को अपने अंदर शामिल कर सकते हैं, कुछ कहानियां शायद आप में हैं, आप दूसरों से गौरव कर लेते हैं, ये सब तरीके हैं जिससे शायद एक कलाकार बन जाता है इंसान।
तो अंकित जी, एज अ कलाकार अर्चिन से जुड़ के आपने जो अब तक जो काम किए हैं और आपको अब तक जो अपने बारे में और अपने ग्रुप के बारे में फीडबैक्स मिले हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे, और अगर आप आपसे कहें कि कुछ शब्दों में अपने ग्रुप को आप डिफाइन करें, अर्चिन्स क्लब को, उसके बारे में बताएं, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
अर्चिन्स में, अर्चिन्स का जैसा नाम ही, अर्चिन्स का जो नाम है वही खुद ब खुद डेफिनेशन बन जाता है अर्चिन्स का
जी,
कि हम सब एक आवारा झुंड है, अलग अलग स्तर से लोग आए हैं, जुड़े हैं, एक दूसरे से सीखते हैं
जी।
एक दूसरे के साथ अपनी अपनी कहानियां जाया करते हैं
जी।
उसी मेल जोल में शायद हम दूसरे लोगों को भी अपनी ही उस कहानियों में इंक्लूड कर लेते हैं
जी।
ना हम आपस में जब वो मेल बैठता है अलग अलग लोगों का, अलग अलग जगह से लोग आए हैं, अलग अलग बोली है सबकी, मगर जब एक कहानी जब हमको मिलती है जिसमें हमें जो हमें लोगों को दिखाना है, जिसका हम मेंशन करने वाले हैं, तो वो जो हम में वो जो विभिन्नता है, अलग अलग जो हम हैं, वो शायद एक हो जाता है। हम सब एक से नजर आने लगते हैं, हम सब एक से दिखने लगते हैं। तो अर्चित की खासियत यही है कि हम सब जब एक साथ आते हैं तब हम सब कोई अलग नहीं है, कोई यहाँ से आया हुआ इंसान नहीं है, कोई वहाँ से, कोई ये, कोई किसी का, सबका अपना अपना नाम है, लेकिन जब वो उस कहानियां में जब दर्शाए जाते हैं, जब वो मेंशन होता है
जी,
सब वो कैरेक्टर है सब कहानी के, सब वो अपनी चीजें सब छोड़ लेते हैं, सब में वो खासियत है शायद कि वो दिखा पाते हैं कि वो जो बनना चाहते हैं
जी,
जो बन गए हैं
जी। धन्यवाद अंकित, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके ग्रुप के सारे सदस्यों से बात करके। और चूंकि मैं भी अर्चिन्स का एक मेंबर हूँ, इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि वंस एन अर्चिन्स ऑलवेज एन
अर्चिन्स।
अंकित ने हमें कितने अच्छे तरीके से बताया कि हमें सीखते रहना जरूरी है, जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे।
ये तो सही बात है, और अर्चिन्स तो सीखते भी जा रहा है और आगे बढ़ते भी जा रहा है। पर अर्चिन्स के शुरुआती दौर और अर्चिन्स के ये 10 सालों की यात्रा के बारे में जानने के लिए चलते हैं अर्चिन्स के एक सीनियर मेंबर के पास और उनसे करते हैं बातचीत। मातृका दीदी, आप तो अर्चिन्स की काफी पुरानी मेंबर हैं, आप हमें बताइए ना अर्चिन्स के शुरुआत के बारे में कुछ।
देखिए, अर्चिन्स की शुरुआत हुई 2013 में। उस समय इंग्लिश डिपार्टमेंट एक फेस्ट ऑर्गेनाइज कराता था अभिनय नाम से, और उसी थिएटर फेस्ट में कुछ सोशल वर्क के, कुछ बीटेक के और कुछ यूटीडी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि चलो एक नाटक करते हैं, और उन्होंने पहली बार मिलकर एक नाटक किया, सियासत की हकीकत। फिर उसके बाद उन्होंने कई नाटक किए साथ में और अलग अलग काफ़ी सारे नाटक किए। ये वो लोग थे जो समाज के अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग बातों को सामने लेकर आते थे और नाटक के रूप में प्रस्तुत करते थे। इनको ये करने में बड़ा अच्छा सा लग रहा था, तो इन्होंने सोचा कि चलिए यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप बनाया जाए, नाटक वाला ग्रुप, और बस इन्हीं स्टूडेंट से बन गया अर्चिन्स। और टीचर के रूप में इन्होंने इंग्लिश डिपार्टमेंट के उस समय HOD हुआ करते थे डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, उनसे गाइडेंस ली और वो बन गए हमारे टीचर कोऑर्डिनेटर, और उन्होंने ही नाम दिया इस ग्रुप का अर्चिन्स। और ये सभी 2013 से लगातार अर्चिन्स, जिसका मतलब होता है बंजारे बच्चे, जो बिना किसी ध्येय के, बिना किसी लक्ष्य के बस एक काम करते जाते हैं, तो ये है अर्चिन्स की शुरुआत। और अभी 2024 में अर्चिन्स को हो चुके हैं 11 साल।
दीदी, आप अर्चिन्स के शुरुआती दौर से शामिल रही हैं, तो आपको इस सफर में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और आपने एज अ ग्रुप कैसे इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया?
मैं अर्चिन्स में शामिल हुई 2017 में, हमने ऑडिशन दिया था और ऑडिशन्स के बाद अर्चिन्स का मैं हिस्सा बनी, और उस समय ऑडिशन में पूरे 12 लोग नए शामिल हुए थे, जिसमें से UTD के कुछ स्टूडेंट्स थे, BTech डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स थे और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। जैसा आपने कहा कि चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, तो चैलेंजेस बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन उस समय हमारे लिए एक कह सकते हैं बड़ा चैलेंज था, क्योंकि नवंबर दिसंबर 2017 में ऑडिशंस के बाद हम अर्चिन्स में आए, और 2018 अप्रैल में हमारे जितने भी सीनियर्स हैं वो सब पास आउट होने को थे, तो हमारे पास कोई ऐसा सीनियर बचा नहीं था जो हमको गाइड कर सके और अर्चिन्स को आगे ले जाने में मदद कर सके, हमको सिखा सके। उन्होंने जो सिखाया 6 महीने में बखूबी बहुत कुछ सिखाया, और इवन हमारे सीनियर जो फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं, नीरज मूर्ति नाम है उनका, वो पुणे में रहते थे उस समय और पुणे में थिएटर करते थे। तो वो आए, उन्होंने हमको काफी सारी चीजें सिखाई। इसके साथ साथ हमने 3 नाटक तैयार किए और लगभग 5-6 बार प्रस्तुति की। तो इस बीच में हमने काफी कुछ सीखा था, बहुत कुछ जाना था, लेकिन उतना नहीं कि हम अर्चिन्स की लिगेसी को आगे ले जा पाए। तो चैलेंजेस तो यही थे कि अर्चिन्स में हम आए, कुछ दिनों कुछ सीखा, फिर जितनी जिम्मेदारियां हैं वो जूनियर्स पे आ गई और एक भी जूनियर नहीं बचे। और दिक्कत कंसिस्टेंसी की भी होती है, जैसे हम अर्चिन्स में आए और हमने लगातार कंटिन्यू किया, लेकिन सभी के साथ ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। बहुत सारी अलग अलग सभी की आवश्यकताएं होती हैं और व्यस्तता होती है, उसके वजह से वो लगातार नहीं आ पा रहे थे। ये एक चैलेंज था। फिर नए ऑडिशंस कराए गए और नए अर्चिन्स को लिया गया, उसके बाद अर्चिन्स आगे बढ़ा।
अच्छा दीदी, हम हमेशा सुनते हैं कि वंस एन अर्चिन्स ऑलवेज एन अर्चिन्स, और ये सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या ऐसा होता है कि नए लोगों को सही तरीके से प्लेटफॉर्म ना मिल पाए?
वंस एन अर्चिन ऑलवेज एन अर्चिन का मतलब ये नहीं है कि पुराने हमेशा रहेंगे और नए को मौका नहीं मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 6 महीने हमने अपने सीनियर्स के साथ बिताए और उन्होंने जो भी सिखाया, और ये भी बताया कि जो हमारे सीनियर नीरज मूर्ति थे वो आए और उन्होंने हमें काफ़ी कुछ सिखाया थिएटर के बारे में और प्रस्तुति के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। तो वंस एन अर्चिन ऑलवेज एन अर्चिन का मतलब यही है कि अच्छा, आप एक बार अर्चिन्स का हिस्सा हो गए तो एक तरीके से अर्चिन्स की जिम्मेदारी हमेशा आपके लिए है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मानी, इसलिए वो उतने दूर पुणे से आए और 10 दिन तक हमारी वर्कशॉप ली। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने पहली बार अर्चिन्स के जो पुराने लोग थे उनका सपना था कि वो IIT खड़गपुर में एक कल्चरल फेस्ट होता है स्प्रिंग फेस्ट के नाम से, उनका ये सपना था कि वो जाएं और वहाँ IIT खड़गपुर में परफॉर्म करें। जब हमारा ऑडिशन हुआ और जब नीरज सर हमको सिखाने आए, तो शायद ये चीज़ उनके दिमाग में आई होगी कि अच्छा, हमारी लेगेसी को, हमारे सपनों को ये नए बच्चे पूरा करेंगे, इसीलिए सारे सीनियर्स ने मिलके हमको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और IIT खड़गपुर के लिए जो भी एक्सपेंसेस थे उसमें से लगभग 50% हिस्सा उन्होंने दिया। और इसके साथ साथ जब भी हमारे सीनियर्स आते हैं, यूनिवर्सिटी आते हैं और हमसे मिलते हैं, तो पूरे हक से अर्चिन्स रूम में आते हैं, बैठते हैं, हमको गाइड करते हैं और पूछते हैं कि क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वंस एन अर्चिन ऑलवेज एन अर्चिन एक फीलिंग है, ये नहीं कि वो मौका लेने आ रहे हैं या फिर वो नए बच्चों को जगह नहीं देंगे। बस ये है कि पुरानों का एक्सपीरियंस और नए का जोश, ये सब मिला के अर्चिन्स बना है, तो वो कंटिन्यू रहे और पुराने लोग जो भी सीख रहे हैं वो नए को सिखाते जाए। ये है वंस एन अर्चिन ऑलवेज एन अर्चिन का मोटो और वंस एन अर्चिन ऑलवेज एन अर्चिन का मतलब।
अर्चिन्स की सीनियर मेंबर होने के नाते उसके फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचती हैं?
अर्चिन्स एक सोशो पॉलिटिकल ग्रुप है जो समाज की बुराइयों और अच्छाइयों को एक तरीके से कह सकते हैं कि आईना है, जो थिएटर को ही कहा जाता है या मीडिया को ही कहा जाता है कि वो समाज का एक आईना होता है, और उन्हीं में से एक अर्चिन्स भी है। तो ये तो नए लोगों पे है कि वो किस तरीके से अर्चिन्स को आगे लेकर जाते हैं, लेकिन हम हमेशा ये चाहेंगे कि नई नई चीज़ें, नई नई बातों को और थिएटर को हमेशा अर्चिन्स आगे लेकर जाए। और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में और बिलासपुर की ऑडियंस को थिएटर का जो स्वाद है वो हमेशा मिलता रहे अर्चिन्स के थ्रू, और यूनिवर्सिटी में भी वो स्टूडेंट्स जो अपने आप को निखारना चाहते हैं, क्योंकि थिएटर जो है वो सिर्फ नाटक नहीं है। जब भी हम थिएटर सुनते हैं तो हमको ये समझ में आता है अच्छा, थिएटर यानी नाटक, तो थिएटर का मतलब नाटक नहीं है। थिएटर पूरी तरह से किसी इंसान के पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। तो नए नए स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने का और अपने आप को थोड़ा और जानने का, समझने का, अपने समाज को, अपने आसपास को थोड़ा और अलग तरीके से जानने समझने का मौका दे अर्चिन्स, और इंशाल्लाह जरूर देगी।
तो अब तक तो आप जीजीओ के अर्चिन्स यानी कि थिएटर और ड्रामा क्लब के बारे में अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो ये था गजर कार्यक्रम में जीजीओ दर्शन का पहला अंक, जिसमें हमने बातचीत की अर्चिन्स के मेंबर से।
आज के इस अंक के बारे में आप अपनी राय एवं विचार चिट्ठी या ईमेल के रास्ते से या फिर अर्पा रेडियो के मोबाइल नंबर 9179132444 के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं।
तो गजर कार्यक्रम के अगले अंक में हम जीजीयू के और भी क्लब्स के बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे जीजीयू के बारे में कुछ और बातें। आज के लिए इतना ही। अब दीजिए अलंकृता
और शिवम को इजाजत। नमस्कार।
सुनो गजर क्या गाए।
गजर की तरह विशिष्ट अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी,
बिलासपुरियंस की आवाज।
ये है आपका अपना अर्पा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अर्पा वेब रेडियो।
गजरनी।